بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواتي وحضرات. کسی سامنے یہاں ایک کٹنگ رکھی ہے. ایوری ون سیز دی ان سین ان پرپورشن ٹو دی کلیئرٹی آف ہز مائنڈ اینڈ دیٹ ڈیپینڈس اپان ہاؤ مچ ہی ہیز پالشڈ اٹ. ہو ایور ہیز پالشڈ اٹ مور سیز مور مور ان سین فارمس بیکم مینیفیسٹ ٹو ہیم. مولانا روم کا فرمان ہے یہ. یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو ہم یہاں بیان کرتے رہتے ہیں. آبویسلی وہ میری اپنی تو کہیں بھی بات ہو نہیں سکتی, یہ انہی جیسے مہان اسکالرس سے ہی مستعار لی ہوئی چیزیں ہیں. یہ جو ہم یہاں ٹائم اینڈ اگین ذکر کرتے رہے کہ یہ روحانیت کھیل ہے, انسان کے رویے جو وہ روا رکھتا ہے دوسروں کے لیے, انسان کی سوچ جو رب کے کانسیپٹ اور رب کا جو کارخانہ قدرت ہے اس کے بارے میں جو کانسیپٹس ہیں اس کے, یہ رویے جتنے زیادہ ہمارے مثبت ہوں گے دوسروں کے لیے, اور رب کے ساتھ عشق کی جو ڈگری ہوگی, کیونکہ عشق میں انسان کسی رائم اینڈ ریزن کو نہیں دیکھتا, وہ صرف اس سستی سے پیار کیے جاتا ہے جس کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے. تو جب ان دو چیزوں کو ہم ملا لیں گے تو پھر ہماری جو ویژن ہے وہ اتنی ہی زیادہ کلیئر ہوگی اور اتنی ہی دور تک جائے گی. دل کو صاف رکھنے سے اور اسے پالش کرنے سے مراد یہی ہے کہ ہمارے رویے دوسروں کے بارے میں جتنے زیادہ مثبت ہو جائیں گے اور ہمارا دل گلے شکوے شکایات تحقیر تضحیک اس سے پاک ہو جائے گا, لالچ سے, حرص سے, حسد سے, انتقام سے, غصے سے, ان چیزوں سے جتنا پاک ہو جائے گا ہم صرف دوسروں کے ساتھ پیار کریں گے اور ان کی مثبت چیزوں پر نظر رکھیں گے, ان کی ویکنسز کو ہم یکسر بھلا دیں گے, اس طرح کی گویا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. یہ جب رویہ ہوگا تو وہاں ہمارے دل میں صرف محبت ہوگی, اور اس پازیٹو چیز کے نتیجے میں پھر جو ہمارا دل پالش ہوتا ہے, دل کا آئینہ جو چمکتا ہے, تو اس میں پھر رب دکھائی دینے لگتا ہے. یہ इससे मुराद ये है, अगर किसी साहब ने इसको रखा था इस नियत से कि इसके बारे में मैं कुछ अर्ज कर दूं, एक सवाल किसी ने लिखा हुआ है, लेकिन इस पे नेक्स्ट संडे बात करेंगे कि बाय इटसेल्फ इट्स अ सब्जेक्ट. ये व्हाट आर ब्लैक होल्स, हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर, आर ब्लैक होल्स गेटवेज टू अदर डायमेंशंस. ये साइंस के नतीजे में, की डेवलपमेंट के नतीजे में हासिल होने वाले जो नतायज हैं, ये उसको डिस्कस करते हैं. इसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे डिस्कस करेंगे, और इस पे कोशिश यही होगी कि इसको तफसील से बयान कर दिया जाए. खा इस पर 2 संडेज लग जाएं या 3 संडेज, तो इसको बहुत डिटेल में. आजकल इसका बड़ा जिक्र है, जब से ये हॉकिंग साहब दुनिया से गए हैं तो नए सिरे से ये चीजें सामने. तो आज ये सवाल अच्छे हैं. अल्लाह अकबर. ये रोजमर्रा से बाकी 2 सवाल तो खालिस्तुल इल्मी नबियत के हैं, वो तो इंशाल्लाह सेपरेटली डिस्कस करेंगे. ये एक सवाल रोजमर्रा की जिंदगी से है कि आजिज़ी क्या है, इसको अख्तियार करने में कुरान और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या गाइडलाइन मिलती है. ये साहबे कराम और फुकरा के आजमूदा तरीक़े कार पर तफसीली रोशनी डालें. इस पर यहाँ 12 बात हो चुकी है हमारी. इसको आसान तरीन लफ्जों में हम ये इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम जेन्युइनली सर्वज़ुबानी नहीं बल्कि जेन्युइनली समझने लगते हैं कि मैं सबसे छोटा हूँ, दूसरे सब मुझसे बड़े हैं, मैं सबसे कम इल्म हूँ, दूसरे मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मेरी क्या इज्जत इसलिए कि सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए हैं, हाँ जिसे वो चाहता है इज्जत बख्श देता है. तो जब सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए हैं तो मेरी क्या इज्जत, और जब मेरी कोई इज्जत नहीं है तो कोई मेरी बेइज्जती क्या करेगा. तो अगर जेन्युइनली हम ये समझने लगे तो फिर हम दूसरे को अपने से बड़ा समझ के उसको इज्जत देते हैं, उसकी बात का एहतराम करते हैं, उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं. यूं इंसान मुतवाज़ो हो जाता है, तवाज़ो जिसकी अहमियत इस्लाम में बहुत है. ये आजिज़ी है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक लिहाज से खतरनाक यूं हो जाएगी कि जब हम आजजी का रवैया हर एक के साथ रवा रखते हैं और वो सिर्फ जुबान की हद तक होता है या दिखावे की हद तक, जाहरी हद तक होता है, तो वो दर हकीकत फिर आजजी का तकब्बुर हो जाता है। यही वजह है कि मैं आम हालात में बहुत आजिज नजर आऊंगा, सबसे झुक के मिलूंगा, सबकी एहतराम करूंगा, इज्जत करूंगा, लेकिन जहां किसी ने मेरे ऊपर जरा सी तनकीद की तो मैं उसका दुश्मन हो जाऊंगा। ये है कि आजजी मेरे जाहिर में है, बातिन में नहीं है। हम अगर जेन्युइनली समझने लगे और वाकईतन हमें ये यकीन आ जाए कि मैं सब में छोटा, दूसरे सब मुझसे बड़े, मैं सब में कम इल्म, दूसरे सबसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा इल्म वाले, मैं सबसे नालायक, दूसरे सब काबिल लोग हैं, मैं छोटा हूं, दूसरे सब मुझसे बड़े हैं, तो फिर उसके अंदर जो रवैया जन्म लेता है वो हर एक को इज्जत देने का होता है, कि हर एक को आदमी इज्जत देता है। तो जब हम हर एक का एहतराम करते हैं तो कुदरत का एक सीधा सादा असूल है कि जो शख्स दूसरों को इज्जत देता है, रब उसे दुनिया और आखिरत दोनों में बाइज्जत कर देता है, उसे इज्जत मिलती है। फिर जब हम दूसरों के काम आते हैं, दूसरों की खिदमत करते हैं, अपनी जरूरियात रोक कर दूसरों की खिदमत कर देते हैं, तो फिर हमारे काम रब करने लगता है। ये उसका वादा है कुरान में है कि तुम मेरे बंदों के काम आओ, तुम्हारे काम मैं खुद कर दूंगा। किसी साहब का सवाल ये है कि हर साल मार्च 25th को क्लॉक एक घंटे आगे और 28th अक्टूबर को एक घंटे पीछे कर दिया जाता है, मज़कूरा सूरत में जुमा और इतवार को पढ़े जाने वाले नवाफिल 9 और 10 बजे के दरमियान बताए गए हैं, क्या उन पर असरअंदाज होता है या नहीं? ये जो क्लॉक को एडजस्ट किया जाता है यूरोप में, ये सिर्फ डे लाइट सेविंग है और इसको वो कहते भी है डे लाइट सेविंग, दिन की रोशनी ज्यादा देर तक उसमें। दर हकीकत आप कभी अगर इस पे गौर करें कि अगर ये एडजस्टमेंट हम न डालें एक घंटे की, दुनिया में नमाजों का टाइम उनके लोकल टाइम के मुताबिक ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन वो जो एक घंटे की एडजस्टमेंट होती है उसकी वजह से उसमें टाइम आगे पीछे हो जाता है। हम नमाज जो पढ़ते हैं वो सूरज के मुताबिक पढ़ते हैं, हम घड़ी के टाइम के मुताबिक नहीं पढ़ते, सूरज का टाइम है, तो हमें सूरज के टाइम के मुताबिक चलना होगा, जो गर्मी और सर्दी एडजस्ट होता है जमीन की मूवमेंट की वजह से। तो अगर हम इस तरह से उसको कर लें कि जो एक घंटा एडजस्ट होता है वो असल में सूरज के तुलू और गुरूब होने के साथ मुंसलिक किया हुआ है उन्होंने, तो टाइम दर हकीकत वही रहता है अगर हम उस टाइम के तब्दील होने के साथ चलें। जैसे सर्दियों में घड़ियां एक घंटा पीछे कर ली जाती हैं वहां, तो हम उस टाइम के मुताबिक पढ़ लें उसको कि 9 और 10 है तो 10 और 11 के दरमियान कर लें उसे हम। और गर्मियों में एक घंटा टाइम आगे कर दिया जाता तो वो हम वापस चले जाएंगे 9 और 10 पर, तो टाइम वही रह जाएगा सूरज के मुताबिक। फिर तो हम उसके मुताबिक चलें। कोई साहब का दूसरा सवाल है कि अगर कोई शख्स नेक नियति से सादत समझते हुए दुरूद शरीफ पढ़े कम या ज्यादा, लेकिन पढ़ने के दौरान तो जो ध्यान और सोचें रूहानी बालीदगी न होने या बिल्कुल ही सिफर होने की वजह से कदरे गफलत होती रहे पढ़ने के दौरान, लेकिन पढ़ता भी रहे कि सादत है और सिद्दिक दिल से इस बात का यकीन हो कि ये एक बेहतरीन अमल है और कभी ना कभी मैं जरूर मेरा ख्याल कट गया उनका पेज। इसमें दो चीजें मैं अर्ज कर दूं। ये मामला कंसंट्रेशन का है, तवज्जो का, रूहानी बालीदगी से इसका ताल्लुक इतना ज्यादा नहीं है। रूहानी बालीदगी तो पैदा होगी दुरूद शरीफ पढ़ने से। जब हमारी तवज्जो उघड़ती है और हम सोच कुछ और रहे होते हैं और पढ़ दुरूद शरीफ रहे होते हैं, तो उससे हमें वो नताइज नहीं मिलेंगे जो हम यकसू होकर, जहनी तौर पर यकसू होकर दुरूद शरीफ पढ़ें तो फिर उससे हमें मिलते हैं। लेकिन दुरूद शरीफ की जो बरकात हैं, उसके जो सवाब है, जो इनाम है, वो ज़रूर मिलेगा पढ़ने से। तो अगर हम किसी वजह से यकसू नहीं भी हो पाते तो हमें पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ने से अपने आप को ना रोकें। तो उसमें होगा ये कि कुछ अरसे के बाद फिर हम खुद ही यकसू होना शुरू हो जाएंगे उसमें। और वैसे अगर इंसान की तवज्जो न मरकूज होती हो इस पर तो इसका बड़ा आसान सवाल है कि बहुत हल्की आवाज में इसे पढ़ना शुरू कर दें और अपनी उस आवाज को बहुत गौर से सुने हम कि हम पढ़ क्या रहे हैं। उसका नतीजा ये होगा कि हमारे जहन में जो ख्यालात की यलगार है वो खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह नमाज में होता है कि अगर नमाज में बावजूद कोशिश के यकसुई मेरी नहीं पैदा होती तो फिर जब मैं पढ़ रहा हूँ नमाज तो एक विस्पर की सूरत में पढ़ ली जाए, उसको मैं खुद सुनूं तो मेरी तवज्जो बन जाएगी कि अपनी आवाज़ को। इसी तरह कुरान पाक की तलावत करते हुए अगर मैं खुद अपनी आवाज़ को सुनूं कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, तो तो मेरी तवज्जो यकसू हो जाएगी उसमें। एक आदमी बैरून मुल्क से मैसेज है, आई प्लीड यू टू डू ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स इन इंग्लिश, दिस विल हेल्प अस इन नेक्स्ट जनरेशन हियर व्हेन दे विल लिसन टू दीज लेक्चर्स एंड रीड योर बुक्स। योर अप्रोच ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स इज कंटेम्पररी एंड आई एंड अदर पीपल एंड स्पेशली द यंग जनरेशंस कैन रिलेट टू द टीचिंग्स more closely. For this reason, I'll ask following questions and please explain these in English, even if they have been answered in Urdu before. Inka pehla question to ye hai ki what is religion? In saab se main ek guzarish ye kar dun कि अंग्रेजी में जवाब देने में मुझे एतराज नहीं है, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ के जवाब देता हूँ तो हम में से एक बड़ी अक्सरियत अंग्रेजी पर वो कमांड नहीं रखती कि उसकी रूह को हम समझ सकें। दूसरा इसमें ये एक प्रॉब्लम आएगी कि बहुत सी टर्मिनोलॉजी ना चाहते हुए भी इस्तेमाल करनी पड़ जाती है हमें। वो जो टर्मिनोलॉजी है उसका अंग्रेजी में इक्विवेलेंट नहीं मिलता। तो जब हम उस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा उसको एक्सप्लेन करना, उसकी वो रूह खत्म हो जाती है। जब हम कोई बात कर रहे होते हैं वो सुनने वाले के दिल पर अगर असर कर रही है तो उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि बात कहने वाला खुद उस पर अमल कर रहा है, या यूं कह लीजिए कि वो बाअमल है। तो जब हम किसी चीज पर खुद अमल कर रहे होते हैं, उसको खुद हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो जुबान में असर पैदा होता है। जब हम पूरा यकीन रख रहे होते हैं किसी चीज पर तो हमारी गुफ्तगू में वो कन्विक्शन पैदा होती है और वो बराह रास्त दिलों पर असरअंदाज हो जाती बात। तो ये गुफ्तगू की रूह है। ये बात कहने में हरगिज हरगिज मेरा मतलब किताबों की तारीफ करना नहीं है, मैं सिर्फ एक बात को एक्सप्लेन करने के खातिर ये कह रहा हूं। ये जो किताबें मार्केट में आई हैं इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की बहुत कोशिश की गई। इनमें दो वो साहिबान भी हैं, प्रोफेसर साहिबान, जो रूहानियत से मुताल्लिक किताबों का अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं, उन्होंने भी इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश की। और वो चूंकि प्रोफेसर हैं, ज़हनी तौर पर बड़े आदमी हैं, ये उनकी अजमत थी, ज़हनी बुलंदी थी कि उन्होंने एक एक चैप्टर तो उसका ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में, लेकिन पूरी दयानदारी से आके मुझे कह दिया कि साहब ये ट्रांसलेट तो हमने किया है लेकिन इसकी रूह इसमें से निकल गई है। तो जब हम उर्दू में यही किताबें पढ़ते हैं तो तो उसका असर कुछ और होता है, ये ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उसका असर वो नहीं होता। तो ये गुफ्तगु की जो रूह है वो उसमें से निकल जाएगी, क्योंकि उर्दू में अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो टर्मिनोलॉजी और वो कन्विक्शन जो मेरे जहन में है, मेरे दिल में है, इन चीजों पर जो मेरा यकीन है पूरा, वो कन्विक्शन उसके अंदर शामिल नहीं हो पाएगी। मेरी मादरी जुबान पंजाबी है, मैं पंजाबी खानदान से ताल्लुक रखता हूं। कुछ प्रोग्राम मैंने कुछ रेडियो स्टेशंस पर और पीटीवी पर भी किए, लेकिन वो पंजाबी में थे। उसका जो फीडबैक था वो ये था कि आप उर्दू में बोला कीजिए, पंजाबी में वो असर नहीं है, हालांकि वो मेरी मादरी जुबान है। तो गुफ्तगू की रूह उससे गायब हो जाएगी। अलबत्ता ये जरूर है कि मैं कोशिश करूंगा कि जो आमतौर पर टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके इक्विलेंट मैं अंग्रेजी में कहीं तलाश कर लूं, कि अंग्रेजी की कई एक किताबें मिल जाएंगी हमें जो यहूदी काहन जो हैं उनकी लिखी हुई हैं, उसमें उन्होंने कई एक टर्मिनोलॉजीज यूज की हुई हैं जो क्रिश्चियनिटी में सेंट्स हैं उन्होंने किताबें लिखी, वहां कहीं टर्मिनोलॉजी मिल जाए। लेकिन इसके कहने के बावजूद मुझे शक है कि वो टर्मिनोलॉजी वो असर नहीं रखेगी जो खुद हमें इस्लाम में जो रूहानियत के एंगल से जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके अंदर जो तासुर पैदा होता है वो तासुर उसमें नहीं होगा। लेकिन मैं आपके जवाबात अंग्रेजी में लिख के भेज जरूर दूंगा, ये मैं कर सकता हूं, ताकि उसमें वो तासुर रह जाए जिसके बारे में मैं डाउटफुल हूं कि वो तहरीर में भी वो तासुर आ जाए। जहां तक रिलीजन की बात है, ये वो डिसिप्लिन है जो रब ताला बंदों को अता करता है अपने पैगंबरों के जरिए से, कि मेरे बंदे इन लाइंस पर जिंदगी गुजारें। और उसके अंदर जो बुनियादी नुक्ता होता है वो होता है अल्लाह ताला की तौहीद और रसालत पर ईमान। क्योंकि जब तक के हम किसी शख्स पर ईमान नहीं रखते, उस पर यकीन नहीं रखते, उसके बारे में हमारे दिल में ये यकीन नहीं होता कि वो जो कहेगा वो दुरुस्त होगा, हम उसकी बात को मानते नहीं हैं। तो रब ताला पर ईमान और उसके पैगंबरों की रसालत पर ईमान, वो उसका बुनियादी आंसर है उस डिसिप्लिन का। और उसके बाद फिर वो वे ऑफ लाइफ है जो रब ताला जिस अंदाज में अपने बंदों को चाहता है कि वो जिंदगी गुजार लें। तो रिलीजन वो चीज है जो हमारी जिंदगी को चैनलाइज करता है उस डायरेक्शन में जहां हम दूसरों के लिए फायदेमंद हो जाते हैं। और जब हम दूसरों के लिए फायदेमंद होते हैं तो दर हकीकत हमारी अपनी जिंदगी बेहतर होती है कि उसमें सुकून, बेफिक्री और आसूदगी आ जाती है। तो ये रब ताला का सेट किया हुआ डिसिप्लिन या वे ऑफ लाइफ वो रिलीजन है। इनका दूसरा सवाल है कि व्हाई देयर आर सो मेनी रिलीजन्स। मैं इससे थोड़ा सा डिफर करने की इजाजत चाहूंगा आपसे। बहुत ज्यादा रिलीजन्स नहीं है, ये हमारा मिसकंसेप्शन है कि दुनिया में बहुत ज्यादा रिलीजन हैं। इसमें दो ही तरह के रिलीजन हैं, एक डिवाइन जो इलाही मजहब है और एक मैन मेड। और जो डिवाइन रिलीजन हमें ज्यादा दिखाई देते हैं वो ज्यादा नहीं है, वो एक ही है असल में। जितने भी रब ताला ने किताबें उतारी हैं और उसके अंदर जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं बंदों के लिए, जितने भी रब ताला के भेजे हुए पैगंबर आए हैं वो सब इस्लाम ही को लेकर आए हैं। यहां इसी जगह पिछली कई नशिस्तों में इसका जिक्र हुआ। कि इस्लाम उतारा गया है मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ जमानों में, उस वक्त के इंसान की जहनी सतह से मुताबिकत रखते हुए, जिस जहनी सतह पर उस जमाने का इंसान पहुंचा है वो अहकामात उसी के मयार पर हैं। और यही पैगाम रफ्ता रफ्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जब आया और कुरान पाक की सूरत में उतारा गया तो दीन मुकम्मल हो गया। और उसको खुद रब ताला ने कहा कि आज दीन मुकम्मल हो गया। ये जो हम कहते भी हैं और हमारा ईमान भी है, आपका भी मेरा भी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मां हैं, खातमुन नबीयीन हैं, वो इसी निस्बत से है कि दीन चूंकि मुकम्मल हो गया अब कोई पैगंबर नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। रसालत का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर मुनक़िता हो गया, अब कोई नहीं आएगा क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका। तो वो सारे के सारे मज़ाहब जिनको हम अपनी मिसकंसेप्शंस की वजह से समझते हैं कि इस्लाम से अलहदा हैं, वो असल में एक ही मजहब है जो मुख्तलिफ औकात में उतारा गया। और वो हर मैसेज जो बाद में आया पहले मैसेज से एडवांस था और वो आके फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मुकम्मल कर दिया गया। तो एक मजहब वो हो गया। बाकी मैन मेड इंट्रोड्यूस हुए जो खुद अपने अंदर खुद ही खत्म होते चले गए। तो मजहब एक ही है इस्लाम, और वो मजहब से ज्यादा दीन है असल में। If Tisra Inka Sawal hai, who was Adam and how we equate this with the evidence of evolution on the planet. Ye aajkal phir under discussion aa raha hai ki insaan usko Darwin ki jo theory hai usme dilchaspi naye sire se galban paida hui hai koi lehar uthi hogi aur is pe bahut zyada discussions hoti hain hum mein se jo bahut padhe likhe log hain wo is par yakeen rakhne lage hain ki jo Darwin ki theory thi wo science ka ek proven fact hai दर हकीकत ऐसा नहीं है डार्विन ने एक थ्योरी दी उसका हक था उसने तहकीक की और उसकी तहकीक के नतीजे में जो कुछ उसको हासिल हुआ वो उसने एक थ्योरी की सूरत में इंट्रोड्यूस करा दिया एज ए फ्री मैन वो उसका हक है जरूर कराए लेकिन जब हम किसी की बात पर यकीन रखते हैं यकीन करते हैं तो हमें अपने जहन में क्लियर होना चाहिए और उसको हम किसी भी चीज को अनबायस्ड तरीके पर एग्जामिन करें डार्विन की थ्योरी ये कहती है कि साहब जो बनमानस है बनमानस की का डीएनए और इंसानों का डीएनए वो 99% आइडेंटिकल है 1% का फर्क है तो इससे यह साबित होता है कि इंसान दर हकीकत पहले बंदर था बनमानस था तो थ्रू एन एवोल्यूशन तब्दील होते होते हम मौजूदा शक्ल को आ गए ऐसा नहीं है ऐसे बहुत से जानवर मिल जाएंगे जिनके डीएनए इंसान के डीएनए से 30% आइडेंटिकल हैं 50% आइडेंटिकल हैं 60% आइडेंटिकल हैं तो उसको हम क्या कहेंगे बात यह है कि डीएनए के अंदर 1% भी बहुत है कल एक महफिल में ये डिस्कशन हो रही थी तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये 1% जो है दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस बनमानस में देखिए तमाम चीजें वो हैं जो इंसान की है लेकिन वो बातचीत नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां कुछ बच्चे अल्लाह ताला माफ फरमाए और उन पे करम करे वो डाउन सिंड्रोम होते हैं उनकी जो चीज वैसे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं उनकी जो चीज इंपेयर होती है सबसे ज्यादा वो उनकी स्पीच है उसमें सिर्फ उनका फर्क ये देखिए बीमारी की वजह से भूलने की शॉर्ट टर्म मेमोरी बिल्कुल चली गई हुई है मेरी कल मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था वो टेक्निकल वर्ड मेरे जहन से निकल गया 1 का फर्क पड़ता है वो भी वर्ड आ जाएगा जहन में तो मैं अर्ज कर दूंगा तो उस बैलेंस में से एक एक्स्ट्रा आता है 13 पेयर्स हैं, 26 होने चाहिए टोटल, 27 हो जाते हैं। और उससे उनके हरकत में फर्क आता है और स्पीच में फर्क आ जाता है। तो डीएनए में एक का फर्क जो है वही फर्क डाल रहा है बनमांस में और इंसान में। तो इंसान की तखलीक बहसियत इंसान ही हुई थी, बहसियत। और चूंकि हम मुसलमान हैं तो हमारा ईमान है, कुरान का एक एक हरफ कलामी इलाही है और वो एक एक हरफ सच्चा है। लेकिन जब हम गैर मुस्लिमों से बात करते हैं तो चूंकि वो यकीन नहीं रखते कुरान पर, तो फिर हम उनसे बात साइंस की जुबान में करते हैं। तो अब चूंकि हम मुसलमानों में बात कर रहे हैं, सवाल पूछने वाले भी मुसलमान हैं, इसलिए कुरान का हवाला उनके लिए भी मोतबर है, हमारे लिए भी मोतबर है कि आदम की तखलीक बहसियत इंसान की हुई है। और सूरह 3 में इंसान को एक अहसन तखलीक कहा गया है। तो अगर ये थ्रू एवोल्यूशन पैदा बना होता इंसान, तो फिर रब ताला इंसान की तखलीक को अहसन तखलीक न कहता कभी कुरान में। जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंसान ही की सूरत में पैदा किए गए, बनाए गए थे और उनकी शक्ल व सूरत यही थी जो आज हमारी है। इसमें सिर्फ अगर फर्क आया है तो एनवायरनमेंट और फूड, ईटिंग हैबिट्स और फूड, इन तीन चीजों ने फर्क डाला है कि कद काठ का फर्क पड़ा है, जसामत का फर्क पड़ा है। लेकिन वो फर्क जो है वो आज भी कायम दायम है। हम दुनिया के मुख्तलिफ जो जियोलॉजिकल डिवीजन है, उसकी जियोग्राफिकल डिवीजन जो है उसको देखें तो मुख्तलिफ खित्तों के लोग जसामत में एक दूसरे से थोड़ा फर्क रखते हैं। अमेरिका में चले जाइए तो जनरली लोग लंबे कद के मिलेंगे, ऊंचे लंबे चौड़े होंगे। यूरोप में आ जाइए तो वो हमारी नस्बत बेहतर कद काट रखने वाले लोग हैं। आप मिडल ईस्ट की तरफ चले, फार ईस्ट की तरफ चले जाइए तो वहां हमसे छोटे कद के लोग मिलेंगे, रंगत में फर्क आ जाएगा। वो ईटिंग हैबिट्स और एनवायरनमेंट और क्लाइमेट का फर्क है वो, तो इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। जब से जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक हुई उस वक्त से लेके अब तक शक्ल यही रही है हमारी। तो डार्विन की थ्योरी के मुताबिक कभी हमारी दुम नहीं थी जो वक्त के साथ साथ खत्म होती चली गई। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात होती बशर्ते जिंदगी। तो अस्सलाम वालेकुम।